شد. تو بابا ज्ञानी तो आत्मा कौन है और योगी तो आत्मा कौन है, इसके बारे में कह रहे थे। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात ज्ञान का स्वरूप, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात व्यर्थ से मुक्त, योगी तो आत्मा अर्थात प्रयोगी,
योगी जीवन वाले,
योगी जीवन वाले प्रयोगी, किस पर प्रयोग करने वाले,
संस्कार
प्रकृति और विकार, संस्कार पर प्रयोग, दृढ़ता से कड़े संस्कारों को मोम की तरह पिघलाया जा सकता है, आज की मुरली का स्लोगन है। अगर दृढ़ता है तो कड़े संस्कारों को मोम की तरह खत्म किया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। दूसरा प्रयोग है प्रकृति के ऊपर, आज का वरदान भी ऐसे ही है, परिस्थिति प्रकृति से उत्पन्न है, इसके लिए वो रचना है और स्वस्थिति रचता है। तो दूसरा प्रयोग करना है प्रकृति के ऊपर, जिसमें परिस्थिति साधन सन्निवेशन, तीसरा करना है विकारों के ऊपर प्रयोग करना है। जो प्रयोग करने वाले हैं वही योगी है, वास्तव में जो प्रयोगी है वही योगी है। आगे बाबा कह रहे हैं कि तो चेक करो कि कहां तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे? समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है, अनेकता अधर्म तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा, समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अब इसको बढ़ाओ, तो जो प्रयोग कर रहे उसकी गति को भी बढ़ाओ, तो क्या होगा, सिद्धि स्वरूप अनुभव करेंगे। आपके जड़ चित्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते, चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब यह यादगार चला आ रहा है। वृद्धि सिद्धि वाले नहीं, परंतु विधि से सिद्धि, मेथोडोलॉजी, मेथड क्या है, विधि क्या है, किस प्रणाली से तुम बन रहे हो उससे सिद्धि, सिद्धि अर्थात सफलता, सक्सेस या कोई प्राप्ति। तो समझा क्या करना है, है सब कुछ लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप। एक्सपेरिमेंट करना और उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हो जाना, यह है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय है। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योगयुक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आगे ये मुरली 25 तारीख की है। 24 नवंबर को दो कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली।
दादी कौन?
ऑलराउंडर,
ग्लोबल में गई।
25 तारीख दोपहर में उसका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वह इस प्रकार है। एक तरफ समर्पण हुआ और दूसरी तरफ किसी ने शरीर छोड़ा, तो बाबा क्या कहेंगे इस बारे में?
दोनों
ही समान,
नया जन्म ले, नया जन्म ले।
बाबा कहते हैं खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते, खेल में खेल, बड़े खेल में छोटा खेल, साक्षी हो खेल देखने में मजा आता है ना। चाहे कोई उत्साह हो चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है,
खेल
हलवे वाले,
खेल में खेल लगता है ना, नाटक में नाटक, खेल में खेल, लीला में लीला। ये लीला धाम है ना, इस लोक का एक नाम लीला धाम भी है, आत्मा यहाँ लीलाएं करने आती है। तो ये लीला में लीला, खेल में खेल, नाटक में नाटक, स्वप्न में स्वप्न, संसार स्वप्नव्रत भी है, इस स्वप्न में ये छोटा स्वप्न, और लगता भी ऐसे ही है जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है, ऐसे ही हो जो बहुत सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, यह भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखी? एक तरफ वो अलौकिक स्वयंवर देखा, स्वयंवर अर्थात
समर्पण से मार रहा हूँ,
समर्पण बाबा स्वयंवर कह रहे उसे, स्वयंवर में कुमारी कन्या स्वयं चयन करती है, वरन करती है, फिर उसके बाद में उसकी शादी होती है उसके साथ। अभी तो नहीं है स्वयंवर, प्राचीन काल में स्वयंवर की विधि थी, सीता का स्वयंवर, द्रौपदी का स्वयंवर, दमयंती का स्वयंवर, सावित्री का स्वयंवर, इस तरह से स्वयंवर आते हैं ना, संयोगिता का स्वयंवर पृथ्वीराज चौहान ने, इस तरह पहले स्वयंवर रहता था। और दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा, लेकिन दोनों दोनों क्या लगे, खेल में खेल, बड़े खेल में छोटा खेल, फर्क पड़ता है क्या?
स्वयंवर जो तो खुद टोटल अपने आप पढ़न करते,
हाँ उसमें भी बहुत है। पहले एकदम प्राचीन काल में वैदिक काल में जब स्वयंवर की प्रथा थी तो कन्या को संपूर्ण अधिकार था चयन करने का, पर मध्य काल में फिर उसके पिता बहुत सारी शर्तें रखते थे कि वो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उन्हीं लोगों को आमंत्रित किया जाता था और उसी के आधार पर फिर वो हार वरमाला डालती थी। परंतु जब ये शुरुआत हुआ वैदिक काल में उसे संपूर्ण अधिकार था, बाद में अधिकार सीमित हुआ और बाद में ये लुप्त हो गया, बाद में नहीं रहा।
राजकुमार को
बुलाके, परंतु वो राजकुमार को बुलाने के लिए भी पिता की शर्तें होती थी ना, कि वो ऐसा शक्तिशाली होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, राजा होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं आ सकता, नहीं तो कर्ण के साथ शादी हो जाती थी द्रौपदी की, ऐसा था ना। तो
दुर्योधन
नहीं, कर्ण आया था स्वयंवर में द्रौपदी के। तो लौकिक तो बाबा कहते हैं खेल में खेल, फर्क पड़ता है क्या, स्थिति में फर्क पड़ता है, अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फर्क पड़ा, थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का, और वो अपने विधि का सहज मनष्ट मोह होना, यह बहुत काल के योग की विधि की स्थिति है, सहज नष्ट मोह स्थिति कैसे होगा, बहुत काल के योग के विधि की स्थिति है, तुरंत आ गए और नष्ट मोह हो गए। अगर कोई होता हुआ दिखता है तो समझ लेना जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। कौन सा चाय का माला है, डुप्लीकेट माला है, ऐसा नहीं हो सकता है। आत्मा ऐसे कड़े बंधनों में फंसी है संसार में और आ गया और कोई दिख रहा है कि एकदम ही नष्ट हुआ है, ये तो बहुत रेयर केसेस में हो सकता है, बहुत रेयर, बिरले ही कोई ऐसा हो सकता है, नहीं तो हर आत्मा को मोह की सूक्ष्म बंधनों को काटने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। और बिना योग के, केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है मोह से छूटने के लिए, उसमें योग चाहिए। योग में प्राप्त अतीन्द्रिय सुख ही आत्मा को उस छोटे सुख से मुक्त कर सकता है। जब उसे ये बड़ा सुख मिल जाएगा तो वो सुख गौण है उसके लिए। तो तो नष्ट मोह सहज मृत्यु का खेल देखा, बाबा के लिए कुछ नहीं है, कोई शरीर छोड़ रहा है, कोई स्वयंवर कर रहा है, कोई प्रोग्राम कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है सभा में जोर से, कोई फर्क पड़ते देखा कभी उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ता
उसे। चल रहे
इसके लिए तो बस वो इस खेल का क्या रहस्य देखा, देखा के स्मृति से भी ऊपर आओ, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित ना करे, इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है, नष्ट मोह सेंटर भी याद नहीं आए, टीचर को देखते हुए टीचर्स को बाबा देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई भी याद ना आए, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, कोई सेंटर की वस्तु याद ना आए, वस्तुओं से मोह होता है ना, छोटे छोटे वस्तुओं से, चम्मच पॉलिथीन बैग छोटी छोटी से मोह होता है,
चमकदार पॉलिथीन बैग
वो वापस नहीं आया तो उसकी थोड़ी चिंता होती है, चम्मच दिखा नहीं कम दिखा तो उसकी भी चिंता होती है, एक है संभालना और एक है मोह, मोह मोह की बात चल रही, कुछ किनारा किया हुआ याद ना है, कुछ भी याद ना है, नष्ट मोह हमारी अंतिम स्टेज है, मोह मोह ने सबको पकड़ के रखा है, मोह सकल व्याधि न कर मूला, जितनी व्याधियां है संसार में दुख है उन सब का कारण एक रीति से मोह है, सब मोह में बंधे हुए फंसे हुए, सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हो, पहले से ही कोई किनारे का सहारा नहीं, कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। तो बाबा यहां खेल की बात कर रहे हैं, खेल में खेल है, चाहे स्वयंवर हो रहा है चाहे कोई शरीर छोड़ रहा है, और सहज नष्ट मोह होने की बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत काल के योग की विधि की वो सिद्धि है, सहज मृत्यु का इस खेल का रहस्य देह की स्मृति से भी उपराम। तो अंत में और कोई भी आकर्षण आकर्षित न करे, इसको कहा जाता है सहज चोला बदलना, कुछ भी याद ना है, जो जो जिस जिस क्षेत्र में है उससे संबंधित कुछ भी याद, तो वो करते समय भी अनासक्त वृत्ति से जब करेंगे तो याद नहीं है, अगर करते समय उसमें मोह है तो वो याद आएगा। जैसे वो दिखाते हैं ना, एक व्यक्ति एक युवक नव युवक, उसके माँ बाप उसे बार बार टोकते रहते थे, मतलब उनका बहुत मोह था उसके ऊपर, तो वो उब गए अपने माँ बाप से, उनके साथ ही रहना, उनके साथ ही उठना, उनके साथ ही खून खेलना सोना सब कुछ उनके साथ करना, तो वो इतना उब गया, उसने देखा कभी बुद्ध और उनके सन्यासी आए हुए हैं, उनको देखकर उसे बड़ा आकर्षण हुआ, उसने सोचा कि यहां अगर मैं चला जाऊं तो इनसे छूट जाऊं माँ बाप से, तो वो बीच बीच में फिर कहने लगा कि अगर आप ऐसे ही मुझे रोकते रहो टोकते रहो तो मैं संन्यास्त हो जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, वो कहता रहा और उनका मोह और ही बढ़ता गया, फिर वो जितना उनसे भागता वो उसे और रोकते, एक दिन ऐसा हुआ कि वो इनसे छूटने के लिए चुपचाप आधी रात को निकल गया, और बुद्ध का जो विहार था वहां जो भिक्षु और भिक्षुणियां थी उनके साथ जाकर उनको कहा कि मुझे संन्यास लेना है, और वो सन्यासी बन गया और उन्हीं के साथ रहने लगा, उसे संन्यास से कोई लेना देना नहीं था, उसे मुक्त होना था माँ बाप से, उनसे पिंड छुड़ाना था, इसके लिए वो वहां से छुटकर वहां चला गया, अभी माँ बाप दोनों इतने परेशान हो गए कि बेटा कहाँ है, पहले इतना मोह और अभी तो मोह और बढ़ गया, तो पिता उसको ढूंढने निकले ढूंढने निकले, फिर उसको याद आया ये कभी कभी कहता था कि संन्यास ले लूंगा, और उसने देखा कि हाँ यहाँ बुद्ध का विहार है और यहाँ कुछ सन्यासी है कुछ भिक्षु है, तो वो गया, उसने देखा अपने बेटे को, तो उसने देखा इसने तो संन्यास ले लिया है, तो उसने कहा बहुत उसको रोया पीटा समझाया, और उसने तो जितना रोया जाता है इस तरह के व्यक्ति के सामने उसका संन्यास में निश्चय और पक्का होता है, वो कहा नहीं मैं तो यही रहूंगा। तो पिता ने सोचा अब क्या करूं, उसने कहा कि मैं भी भिक्षु बनता हूं। उसको संन्यास से कोई लेना देना नहीं है, परंतु क्योंकि मुझे तुम उसके पास रहना है इसके लिए मैं भी भिक्षु बन जाता हूं और वो भी भिक्षु बन जाता है और उसके साथ ही रहने लगता है। फिर उसकी माँ बहुत दिन तक देखती है कि उसके पति भी नहीं आए और बेटा भी नहीं आया, तो वो ढूंढने निकलती है उसकी खोजबीन में। और फिर उसको भी ध्यान में आता है कि बेटा कभी कभी ऐसा कहता था कि मैं भिक्षु बन जाऊंगा, तो वो वहां पर जाती है और देखती है अरे
दोनों भी आए,
बेटा और पति दोनों संन्यास। तो वो कहती है कि मुझे भी संन्यास लेना है, उसे संन्यास से कोई लेना देना नहीं है, परंतु संन्यास पहला जो था उसको संसार से भागना था, संन्यास से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा जो था क्योंकि वो बेटे के साथ रहना था, माँ को दोनों के साथ रहना था, तो तीनों ही वहां पर इकट्ठे आ गए। फिर तो क्या, इकट्ठा ही रहना, इकट्ठा ही खाना, इकट्ठा ही भिक्षा मांगने जाना, इकट्ठा ही आना बैठना गपशप करना। तो फिर बाकी जो भिक्षु और भिक्षुणियां थी उनको थोड़ा मतलब वो देखने में ये लगने लगा। फिर वो बुद्ध को बताया तो उसको बात समझ में आई, तो उसने कहा कि कैसा संन्यास है तुम्हारा। संन्यास का तो अर्थ ही है एकांत में रस लेना, स्वयं में रस लेना, दूसरों के रस, दूसरों में जो रस है उससे मुक्त होना, ये संन्यास है। ये संन्यास नहीं है कि संसार से तो छूट के आ गए और यहां ही एक जमघट तैयार कर दिया और उसी में फंस गए। संन्यास का तो अर्थ ही है कि एकांत में ही स्वयं में रस लेना, या अगर परमात्मा ज्ञान, वहां तो परमात्मा की बात नहीं है उनके संग में, तो वो कहता है कि एकांत में रस लेना संन्यास है, ना कि दूसरों के रस, दूसरों में जो रस है हमारा वो समाप्त हो जाए, जो मोह है वो समाप्त हो जाना, ये संन्यास है। तो यहां पर भी संसार से छूट के आ गए, सारी बेड़िया वहां तोड़ दी और यहां आकर नए मोह बंधन तैयार किए, नए संबंध तैयार किए, सेंटर पर नए संबंध तैयार किए, भाइयों का और टीचर बहनों का, उनमें मोह, उसका उसमें मोह, वस्तुओं में मोह, संसार को छोड़ के आगे पर वस्तुओं का मोह नहीं गए। फिर नए नए मोह हर दिन, नए नए बंधन, फ्रेश अटैचमेंट्स। तो ये कोई, ये तो फंस जाना है। फिर वो केवल जो रह जाता है सेवाएं रह जाती है, बस सेवाएं कर रहे, अच्छी सेवाएं होती है, परंतु जो योग है और जो तपस्या है, जो ज्ञान है, जो वैराग्य है, वो नहीं रहता ऐसे इस तरह के संन्यास में। तो बाबा कह रहे हैं सबसे न्यारे और बाप के प्यारे, बाबा को प्यारा भी कौन है जो न्यारा है, सहज न्यारा, किसी में मोह नहीं, कोई बहुत ज्यादा घनिष्ठता जिसको कहते फैमिलियरिटी, मोह का भी वो सूक्ष्म रूप है वो भी नहीं। कोई भी जिज्ञासु याद ना आए, सेंटर याद ना आए, कोई सेंटर की वस्तु याद ना आए, कुछ किनारा किया हुआ याद ना आए, जो छोड़ा हुआ है उसको ही भूलती नहीं आता, बार बार याद रहता है ये छोड़ा है, ये छोड़ा है, ये छोड़ा है। जैसे मैंने कहा था ना, वो एक सन्यासी जिसने अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया था और सर साधु बन गया था, अभी 30 साल हो गए, परंतु उस समय जो छोड़ा था और जो न्यूज़पेपर में आया था कि इसने सब कुछ छोड़कर सन्यास लिया है, वो जो वो कटिंग न्यूज़पेपर की अभी भी उसके पास है और जहां भी जाता है सबको बताता है, देखा मैंने अपनी करोड़ों की जायदाद को लात मार दी थी, तो वो कटिंग अभी भी है, शायद लात ठीक से लगी नहीं थी, कारण ये है। तो बाबा कहते हैं कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, इस ज्ञान मार्ग में हमारा कोई भी सहारा नहीं है, एक बाप के अतिरिक्त, हमारे कर्मों के अतिरिक्त। बुढ़ापे में सहारा कौन, ये प्रश्न है एक, बुढ़ापे में योगी आत्मा का सहारा कौन, जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेते हैं, साधु बन जाते, सन्यासी बन जाते या किसी भी संस्था में चले जाते, उनका सहारा कौन, इस पर चिंतन करना। ये चिंतन का विषय है। यहाँ पर भी हमको पूछते हैं ना कि आप इस संस्था में आ गए, घर वालों को छोड़ दिया, घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं रखा और अभी आप बूढ़े जब हो जाओगे तो आपका सहारा कौन? ये सुंदर प्रश्न है, चिंतन करके इसके ऊपर लिखा जा सकता है बहुत कुछ। संसार में कौन किसका सहारा, पहले तो ये सोचो। क्या बेटे माँ बाप का सहारा है? वृद्धाश्रमों में रखते हैं माँ बाप को, हॉस्पिटल में छोड़ के जाते हैं, माउंट में भी ऐसे कही है कि आज छोड़ के गए, बाद में आके देखता नहीं कोई छोड़ दिया और बस फिर फोन करना पड़ता है कि आज छुट्टी है, तब आते पेमेंट करने, पेमेंट दिया बस। आत्मा को प्यास प्यार की है, सुख की है, स्नेह की है, सम्मान की है, वो प्राप्त नहीं होता है उनको। जितने वृद्धाश्रम है संसार भर में, वहां जाओ और उनके वहां के बूढ़े लोगों को पूछो तो वो वहां क्यों आए, क्योंकि उपेक्षा मिली है माँ अपने बेटों से अपने बेटियों से। अगर उनको पूछो यहाँ क्यों आए तो कहेंगे हम अपनी इच्छा से आए, अपनी मर्जी से आए। उनको वही अच्छा लगता है, भले उसी शहर में बेटा और बेटी रहते हैं परंतु वो जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वो सम्मान वहां प्राप्त नहीं है। यहां आते ही यहां एक भिन्नता है, यहां आते ही एक नए ईश्वरीय परिवार से आत्मा जुड़ती है। जो सम्मान उधर प्राप्त नहीं हुआ वो यहां प्राप्त होता है, जो प्यार उधर नहीं मिला वो यहां मिलता है। और यहां क्योंकि परमात्मा ही हमारा एकमात्र सहारा है, इसके लिए हम निश्चिंत हैं, वो ही देखेगा, कुछ भी हो जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रश्न के ऊपर चिंतन करना, बुढ़ापे में सहारा कौन? फिर लास्ट चिमन चिमन भाई फिर बाबा निर्मल शांता दादी से मुलाकात। संगठन अभी दादी का दिन था ना 15 मार्च, बाबा का 15 मार्च। संगठन ये कौन सी दादी थी? ये ऑलराउंडर दादी थी, खुदा दादी की माता जी, एक ही साथ रहे कितना समय दोनों, परंतु कोई देखे तो पता ना चले ये बेटी और ये माँ है, इतना नष्ट हुआ। ये भाव ही नहीं कि ये मेरी बेटी है, ये भाव ही नहीं कि ये मेरी माँ है, लौकिक माँ है। कोई नया देखे तो पता ही ना चले, जब तक बताया ना जाए कि ये और ये। हाँ, वो भी नहीं तो एक होता है ना, भाई या बहन रहते तो साथ में रहेंगे, आप देखोगे घूमेंगे डिपार्टमेंट, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे जिससे ये प्रतीत होगा कि ये भाई, पर यहाँ वो है ही नहीं। कितने साल लोगों को पता ही नहीं ये और ये, इतना नष्ट हुआ स्थिति। तो बाबा निर्मल शांता दादी से मुलाकात। संगठन अच्छा लगता है, संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नजर कितने प्यार से आप सबकी तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी है, कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना और खुशी बांटनी है, और क्या काम है, सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हैं ना, खा भी रहे बांट भी रहे खुशी। आप सब एक एक कौन हो? सब दादियों के लिए बाबा कह रहे हैं, दर्शनीय मूर्त हो। दर्शन शब्द बहुत ऊंचा शब्द है भक्ति में, एक है देखना अवलोकन करना, एक है दर्शन करना। दर्शन किसका किया जाता है? एक तो देवताओं का, भगवान का या महान हस्तियों का, उसके लिए दर्शन शब्द प्रयुक्त किया जाता है। दर्शनीय मूर्त, दर्शनीय मूर्त बाबा कहते हैं, सबकी नजर निमित्त आत्मा तरफ जाती है, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। अच्छा तो क्या सुना पूरी मुरली में? ज्ञानी और योगी, ज्ञानी कौन योगी कौन? सुनने सुनाने वाले नहीं, सुनना सुनाना नहीं, परंतु स्वरूप बनना, परंतु एक घंटे दो घंटे वाले योगी नहीं, परंतु योगी जीवन वाले योगी। ज्ञान निरंतर बुद्धि में हो, निरंतर, उसके लिए बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं नोट्स निकालो, बार बार बुद्धि में रहे तो ही ज्ञानी की स्थिति, नहीं तो कोई परिस्थिति आ गई तो ज्ञान समाप्त हो जाता है, भूल जाता है। तो ज्ञानी के लिए बाबा ने और क्या कहा, व्यर्थ जानना हो तो व्यर्थ अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है समर्थ। तो हर संकल्प भी कैसा हो, शक्तिशाली, क्योंकि संकल्प क्या है, बीज। तो संकल्प बोल और कर्म समर्थ अर्थात ज्ञानी, योगी जी निरंतर ज्ञान रहे अर्थात ज्ञानी। तो ज्ञानी अर्थात व्यर्थ से मुक्त, ये था ज्ञानी। दूसरा था योगी, योगी अर्थात योगयुक्त युक्ति युक्त, योगी अर्थात प्रयोगी। तो अपने संस्कारों के ऊपर प्रयोग करना है, पहले उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी, ऐसा कौन सा संस्कार है जो मेरे पुरुषार्थ के मार्ग में बाधक है। महान चेकिंग करनी पड़ेगी, आगे जो संडे में मुरली आने वाली है उसमें बाबा ने कहा है कि केवल चेकिंग से नहीं होगा, महान चेकिंग करनी पड़ेगी, महान, बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग। वो जो स्थूल चेकिंग जो पहले करते थे ज्ञान में आने के बाद, वैसी नहीं, अभी हमारी चेकिंग भी, चेकिंग की भी चेकिंग, सूक्ष्म चेकिंग, गहराई से चेकिंग, स्वयं स्वयं को देखना बहुत बड़ा काम है ये। क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं तो एक टाइम आता है जैसे बुद्धि वहां रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है, हम देख नहीं पाते अपने आप। उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। अमृत वेले ये कार्य हो सकता है या शाम को ये कार्य हो सकता है। एक है बाप को, बाबा को चाट देना रात को सोते समय, एक दूसरा है शाम को उसको चाट देना योग से पहले, जब कार्य पूरे होते हैं 5 बजे 6 बजे या किसी का 7 बजे, थोड़ा सा निवृत्त होने के बाद उस टाइम पर बाबा को चाट देना अपने दिन भर का योग करने से पहले, उसके बाद योग करें, वो भी एक समय है हल्का होने का। और रात में वापस, 2 समय है चाट, उतामिल देने का, चाट देने का, तो हल्का होने के लिए। तो अपने संस्कारों को इस समय हमको चेक करना है कि ऐसा कौन सा संस्कार आया और जिससे कुछ तो हलचल हुई, क्योंकि हमारे संस्कारों का हमको भी ज्ञान नहीं है। जो संस्कार हमारे अंदर है वो इतने छिपे हुए हैं, क्योंकि कुछ कुछ संस्कार तो ऐसे हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में वो बाहर निकलते हैं, अन्यथा वो शांत रहते हैं, डॉर्मेंट, विषुप्त, सुषुप्ति में रहते हैं, वो कुछ कुछ परिस्थितियों में ही बाहर निकलते। तो उन परिस्थितियों में वो कौन सा संस्कार बाहर निकला उसकी चेकिंग करनी। तो पहला प्रयोग संस्कारों पर, दूसरा परिस्थितियों पर, संस्कारों पर चेकिंग और विकारों के तो हमेशा कर सकते, पर परिस्थिति का और भी कठिन है जैसे मैंने कहा अभी। तो परिस्थितियों पर, साधन पर निर्भरता, उसके ऊपर चेकिंग, उसके ऊपर प्रयोग। तीसरा विकारों पर, एक तो स्थूल विकार और उसमें फिर सूक्ष्म सूक्ष्म जैसे रोग। अभी कल जब मैं दादी से मिल रहा था तो विदेश की बहन दादी ने बाहर बाजू में बैठी थी और बहुत सारी बहनें थे, दादी मिल रहे थे सबसे, तो एक जो विदेश की बहन थी वो किसी एक पूरा जो देश था उसकी इंचार्ज थी, तो उसको दादी बहुत ही प्यार कर रही थी, उसको ये भी दो, उसको वो भी दो, फिर उसको गले मिला, उसको भा के पहनो, उसको ये करो, फिर वो सब चले गए। फिर मुझे, मैं बैठा तो दादी ने कहा उसको यहाँ बिठाना बहुत जरूरी था। मैंने कहा क्यों? बहुत रोग दिखाती है पूरा इतना हॉलैंड की पूरा इंचार्ज है ना, तो बहुत ही रोग दिखाती है, उसको ये प्यार करना बहुत जरूरी था
बहुत रोती है बहुत रोती है,
रोग रोग दिखाती है मतलब ये बड़ा आश्चर्य लगा, इसको यहाँ बिठाना बहुत जरूरी था और सब याद है जाते। तो ये छोटे छोटे संस्कार है ना, वो हमको पकड़ में नहीं आते, उसको पकड़ना है। तो संस्कारों के ऊपर प्रयोग, और वो भी प्रयोग अभी बाबा ने कहा फास्ट गति से करो, तीव्र गति से करो, तो सिद्धि मिलेगी। एक नहीं है, वही तो, बहुत सारे संस्कार है, इतने सारे संस्कार है हमको पता ही नहीं। पहले तो हमको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, हमको
उसका और रूप बढ़ जाएगा
दादी ने। और उसके रूप इतने बदलते रहते हैं कि उसका नए नए अवतारों में आता है, वो प्रकट होता है, हमें भी नहीं पता। जैसे वो कभी नरसिंह अवतार धारण करते हैं, उधर कभी मत्स्य अवतार, कभी भरा अवतार, कभी नरसिंह अवतार, ऐसे अलग अलग अवतार होते हैं ना, मोहिनी अवतार समझ में नहीं आता क्या है ये। तो वो विकार भी उस तरह भिन्न भिन्न संस्कार भिन्न भिन्न रूप से आते हैं, जो हमको पता ही नहीं चलता है। हमको ये भी नहीं पता चलता है कि ये विकार है या ये माया है, ये परिस्थिति है, इसको जीतना भी है ये तो हम कहते हैं अरे ये तो बाबा ने बताया नहीं, आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया पेपर में। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, हमको कहते हैं अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, ऐसा भी होता है क्या? और वहां फेल। परंतु सीखना है और आगे बढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाने आती है, जो कुछ भी होता है कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाने आती है, पाठ पढ़ो और आगे बढ़ो, बस ये करना है। तो प्रयोगी बनना है, वही योगी है, जो प्रयोगी है वही योगी है। फिर बाबा ने क्या कहा, खेल में खेल, इस सारे संसार को खेल की दृष्टि से देखो, साक्षी होकर देखो, सब खेल है, खेल चल रहा है, मृत्यु हो रही है, स्वयंवर हो रहा है, समर्पण हो रहा है, जो भी हो रहा है सब खेल है। नष्टो मोह, सारी निगाह मंदिर की ओर, ना ही किनारे सारे छोड़े हुए हो। फिर दादियों के लिए कहा कि सभी दादियों क्या है, दर्शनीय मूर्त है, खुशी खाते रहते हैं और खुशी बांटते रहते हैं। अच्छा ओम शांति।
दादी की तबीयत कैसी
है? ठीक है।